हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका, पेश हैं समाचार। आज दिन बुधवार, तारीख 14 मई 2025। टेरेबॉन के मॉन्ट्रियल क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के लिए ब्लॉक क्यूबेकवा के उम्मीदवार का कहना है कि वे इस समय जुडिशियल रिकाउंटिंग के बारे में अपने विकल्पों पर विचार कर रही हैं, जिसमें उन्हें एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि लीगल रिकाउंटिंग के बाद, जिसके बाद वोट में अप्रत्याशित रूप से उलटफेर हुआ था, वे अपने सामने मौजूद सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहती हैं। नैटली सिंक्लेयर डेजिने ने सोमवार को फेसबुक पर लिखा कि वे अगले चरणों के बारे में सभी को अपडेटेड रखेंगी। सिंक्लेयर डेजिने का बयान ऐसे समय में आया है जब चुनाव कनाडा निर्वाचन क्षेत्र में एक ब्लॉक मतदाता से एक बिना गिने मेल इन मतपत्र से जुड़ी एक एरर की जांच कर रहा है। वोटर इमैनुअल बोजे ने ये बताया कि उन्होंने अप्रैल की शुरुआत में इलेक्शंस कनाडा द्वारा प्रदान किए गए पते वाले लिफाफे का उपयोग करके अपना वोट मेल किया था, लेकिन इसे डिलीवर न किए जाने के कारण उन्हें वापस कर दिया गया। उनका कहना है कि वे आउटलेट्स को इस समय ब्लॉक क्यूबेका के लिए मतदान कर रही थी। इलेक्शंस कनाडा की एक ईमेल में यह कन्फर्मेशन की गई है कि उनसे ये एरर हुई थी। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। लिबरल तातियाना ऑगस्टे को न्यायिक पुनर्गणना के बाद सिंक्लेयर डेजिग्ने पर एक वोट के अंतर से विजेता घोषित किया गया था। एक चुनाव में लिबरल्स 28 अप्रैल को माइनॉरिटी सरकार के साथ सत्ता में लौट आए हैं। इधर कोचेंटलियो की एक महिला ने क्रेडिट कार्ड घोटाले का शिकार होने के बाद दूसरों को चेतावनी दी है। उनका यह कहना है कि ये फ्रॉड करने वालों की बढ़ती चालाकी को उजागर करता है। सोमवार को 70 वर्षीय अर्लीन गोल्डबर्ग ने कहा कि उन्हें एक नंबर से फोन आया जो उनकी बैंक से लग रहा था। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक के धोखाधड़ी विभाग से मैथ्यू के रूप में पहचाना। महिला ने कहा कि 2 साल पहले उन्हें धोखाधड़ी का शिकार होने के कारण वे तुरंत अलर्ट हो गई थीं, लेकिन कॉल करने वाले ने उनके लेन देन के बारे में सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि ये बैंक जैसा ही लग रहा था। कॉल करने वाले ने कोल्बर्ग से कोड देने के लिए कहा, हालांकि उन्होंने शुरू में मना कर दिया, लेकिन बाद में इस कर्मचारी ने उन्हें इसके लिए मना लिया। फोन रखने के बाद गोल्डबर्ग को अपने बैंक में जब फोन किया तो उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला। बैंक प्रतिनिधि का कहना है कि वे कभी भी कर्मचारी नंबर नहीं देते हैं और उनका कार्ड अभी के लिए रद्द कर दिया गया है। मॉन्ट्रियल का समर टूरिज्म सीजन आधिकारिक तौर से शुरू हो चुका है और शहर को एक मजबूत वर्ष की उम्मीद है, लेकिन पॉलिटिकल तनाव और मुद्रा संबंधी चिंताओं के कारण अधिकारियों का कहना है कि कम अमेरिकी उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं। टूरिज्म मॉन्ट्रियल के अनुसार ये ग्रैंड प्री के बाद थोड़ा और पता चलेगा। टूरिज्म मॉन्ट्रियल ने हाल ही में अमेरिकी विजिटर्स को टारगेट करते हुए अपने लिए एक विज्ञापन अभियान शुरू किया है। इसमें उनका कहना है कि अमेरिकियों के लिए ये कॉस्ट वाइज बहुत अच्छा है और उन्हें बहुत सारे लाभ यहां मिल सकते हैं। मॉन्ट्रियल सिटी भी कनाडा के लोगों द्वारा अमेरिका का बहिष्कार करने का लाभ उठाने की उम्मीद कर रही है। मॉन्ट्रियल की डाउनटाउन व्यवसाय विकास समूह का कहना है कि वे इस गर्मी को लेकर के टूरिज्म में काफी आशावादी हैं। पार्टी क्यूबेकवा नेता पॉल सेंट पियर प्लेमेंडो ने अर्थबास्का में अपने उम्मीदवार पत्रकार एलेक्स बोइसोना का काफी बचाव किया है। पीसीक्यू के नेता एरिक दुहेम द्वारा उनके कार्यकर्ता अतीत को लेकर किए गए हमलों के बाद ये सफाई सामने आई है। सोमवार को पार्टी क्यूबेकवा ने बोइसोना की उम्मीदवारी की पुष्टि की। दी क्यूबेक सिटी में सुबह के शो प्रीमियर ह्यूर की मेजबानी करते हैं। अर्थबास्का में अपनी नेशनल असेंबली सीट जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। दुहेम ने बोइसोना पर हमला करने में देर नहीं की, जिन्होंने 2001 के अमेरिका के शिखर सम्मेलन के विरोध में 22 साल की उम्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सेंट पियर प्लेमेंडो ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें पता है कि उनके उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी गई थी। मॉन्ट्रियल शहर सड़कों को साफ रखने के लिए अपने प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है। कार्यकारी समिति में बैठने वाली लशिन की मेयर के रूप में काम करने वाली महिला का कहना है कि अगर कचरा वहां छोड़ा जाता है जहां उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो संपत्ति मालिकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि महामारी के बाद से अनुचित कचरा निपटान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। गलत दिन कचरा बाहर फेंकने या निपटान नियमों का पालन नहीं करने पर निवासियों पर सैकड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। इंस्पेक्टर्स अक्सर कचरा बैगों की तलाशी लेते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता जा रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिए सिटी प्रॉपर्टी ओनर्स पर जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है, भले ही कचरा किसी किराएदार ने छोड़ा हो। सिटी का कहना है उन लोगों को लक्षित नहीं कर रही है जो कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सा दिन कचरा फेंकने का दिन है। इसके बजाय ये उन बिल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां से लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि उन्होंने लिबरल्स को मेजॉरिटी वाली सरकार बनाने में मदद करने के लिए किसी अन्य संघीय दल से कोई बातचीत नहीं की है। ये एक ऐसा पैमाना है जिससे पार्टी अब सिर्फ 2 सीटों से पीछे है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि 2025 के फेडरल चुनाव जीतने के बाद फ्लोर क्रॉसर्स का वे पीछा नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को अपने पोस्ट कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवालों का जवाब देने के बाद ये प्रधानमंत्री द्वारा संभावना के बारे में सबसे स्पष्ट बात थी। रिडू हॉल में कॉन्जर्वेटिव ब्लॉक क्यूबेक व एनडीपी या ग्रीन संसद सदस्यों को लुभाने की कोशिश के बारे में पूछे जाने पर ये देखते हुए कि लिबरल्स के पास 170 सीटों वाली माइनॉरिटी है जिसे पार्टी को सिर्फ 2 सीटों के बाद 172 सीट होने पर बहुमत में बदला जा सकता है। कार्नी ने कहा कि वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी सांसदों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्नी ने पोलिएव्र और शीर से बातचीत की साक्षात्कार में पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद कॉन्जर्वेटिव नेता पियर पोलिएव्र से उन्होंने बात की थी। हाल ही में मीडिया इंटरव्यूज में अंतरिम एनडीपी नेता डॉन डेविस ने सुझाव दिया है कि लिबरल 7 सदस्यों वाले अपने नए कॉकस के लिए प्रस्ताव बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो कार्नी के अनुसार वे इसमें शामिल नहीं हैं। कुछ अन्य समाचारों में आपको बता दें कि इस समय स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार यानी आज गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान ये बमबारी में तेजी देखी गई है। इस हमले में ज्यादातर मौतें महिलाएं और बच्चों की हुई हैं जो उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में कई घरों को निशाना बनाकर की गई थी। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हमसफर से।